दिन भर 23 दिसंबर दिन रविवार, सभी सुनने वालों को मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। इंडोनेशिया में आई सुनामी के बाद मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार।
तांगकप डरात ini dikerjakan di lapangan dengan cepat dan sebaik-baik।
लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए का हुआ सीट बंटवारा।
पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने फैसला लिया है।
सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने में एक बार फिर असफल हुई महिलाएं।
सबरीमला जाते हैं ना, यह सबका मन में यही है, यही विचार है, आचार पद्धति है, तोड़ना नहीं चाहिए।
और सुनवाएंगे पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों पर एक खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। इंडोनेशिया में आई सुनामी के कारण अब तक 222 लोगों की मौत का समाचार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रेकाटोआ ज्वालामुखी के फटने के बाद समुद्र के भीतर हुए भूस्खलन की वजह से ये सुनामी आई। इस कारण जावा और सुमात्रा में कई समुद्री तटों में तबाही मची है। सुनामी विशेषज्ञ एडम स्विजर ने तबाही के कारणों को लेकर बताया।
Part of the volcano collapses catastrophically, and that causes a disruption of what is the water column, and that causes a wave.
ज्वालामुखी का एक हिस्सा ढह गया और इस कारण पानी का स्तंभ सा बन गया। इससे लहर पैदा हुई और आसपास के इलाके की ओर बढ़ गई। ऐसी स्थिति में आप इसके आने का तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक ये आपके एकदम पास ना पहुंच जाए। ये थे सुनामी विशेषज्ञ एडम स्विजर के शब्द। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुफिया एजेंसी के दो पूर्व प्रमुखों को गृह और रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी एनडीएस के पूर्व प्रमुख असदुल्ला खालिद को रक्षा मंत्री बनाया गया है। 2012 में संदिग्ध तालिबान हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उनसे पहले एनडीएस के प्रमुख रहे अमरुल्ला सालेह नए गृह मंत्री होंगे। दोनों ही पाकिस्तान द्वारा तालिबान लड़ाकों की कथित रूप से मदद किए जाने की आलोचना करते रहे हैं। इन दोनों नियुक्तियों को अफगानिस्तान की संसद की अनुमति लेनी होगी। ये फेरबदल ऐसे समय हो रहा है जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों की संख्या घटाने का फैसला किया है। जापान के सम्राट अकिहितो रविवार को 85 साल के होने जा रहे हैं। वो अगले साल अप्रैल में गद्दी से हटने भी वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अपने जन्मदिन पर आखिरी संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने जापान के लोगों और साम्राज्ञी मिचिको का धन्यवाद किया। इस दौरान वो थोड़े भावुक भी हो गए। अब सम्राट के तौर पर मेरी यात्रा खत्म हो रही है। मैं जापान के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने प्रतीक के तौर पर मेरे पद को स्वीकार किया और मेरा समर्थन किया। मैं साम्राज्ञी का भी आभार प्रकट करता हूं जो एक आम जापानी नागरिक के तौर पर मेरी जिंदगी की यात्रा की हमसफर बनी और 60 सालों से पूरी निष्ठा से जापान की जनता के लिए समर्पित हैं। ये थे जापान के सम्राट अकिहितो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि अलकायदा फिर से उभर रहा है और यूरोप पर हमला करने की साजिश रच रहा है। संडे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बेन वॉलिस ने कहा कि अमेरिका में 9/11 हमला करने वाला चरमपंथी संगठन अभी भी हवाई हमले करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेनी सरकार धमाकों के नए तरीकों से बचने के लिए शोध पर लगभग $32 मिलियन का निवेश कर रही है। वॉलिस ने कहा कि अलकायदा और इसके सहयोगी अब सीरिया, यमन, लीबिया और अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हजारों लोग लगातार तीसरे सप्ताहांत पर राष्ट्रपति के कथित तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने अदालतों और मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब वो इन्हें विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रदर्शनकारी जितना मर्जी प्रदर्शन कर सकते हैं, बस वो हिंसा से दूर रहें। ये रैलियां उस समय शुरू हुई थी जब पिछले महीने विपक्ष के नेता बोर्को स्टीफनोविच को एक रैली के दौरान पीट पीट कर बेहोश कर दिया गया था। पिछले 7 दिनों में तेल के दामों में 11% की कमी आई है। ऐसा तब हुआ है जब ओपेक और गैर ओपेक देशों ने 1.2 बिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन घटाने का फैसला किया था। अगर तेल के दामों में गिरावट आती रहती है तो तेल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक ने तेल का उत्पादन घटाने की तैयारी कर ली है। ब्रिटेन की पुलिस ने गैटविक एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाकर एयर ट्रैफिक बाधित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 47 साल के पुरुष और 54 साल की महिला को रिहा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों अब इस मामले में संदिग्ध नहीं हैं और उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीबीसी समाचार।
ये
ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। इंडोनेशिया में बीती रात जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तब उन पर एक प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूटी। इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीपों जावा और सुमात्रा के बीच मौजूद सुंडा स्ट्रेट पर आई सुनामी में अब तक मरने वालों की संख्या 222 से ऊपर पहुंच गई है और 843 से अधिक लोग घायल हैं। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी से।
पानी बहुत तेजी से आया, बहुत सारे लोग तेजी से भागने लगे और फिर चपेट में आ गए, कुछ लोग बह गए। ये थे सुनामी से बचने वाली एक महिला के शब्द। कल रात इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट में आई सुनामी के कारण मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। सुनामी बिना किसी चेतावनी के रात में आई, जिससे सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। अधिकारियों का कहना है कि अनक क्रकाताऊ ज्वालामुखी फटने के बाद समुद्र के नीचे हुई हलचलों के कारण सुनामी आई। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वह समुद्र तटों से दूर रहें, क्योंकि दूसरी बार भी सुनामी आ सकती है। बचाव अभियान जारी है। बेंटन प्रांत के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि जिंदा लोगों की खोज की जा रही है, लेकिन साजो सामान की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम अभी भी खोजी अभियान चला रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऐसी संभावना है कि मलबे के नीचे जीवित लोग हो सकते हैं। हमने सभी एजेंसियों को इस काम पर लगा दिया है। अभी भारी उपकरण नहीं पहुंचे हैं, हमें इन उपकरणों की बहुत जरूरत है। हमारी रिपोर्टों के अनुसार अभी उपकरण रास्ते में हैं। ये थे एक स्थानीय अधिकारी के शब्द। सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है, जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुनामी स्थानीय समय अनुसार रात 9:30 आई। इस समय इन इलाकों में लोग छुट्टियां मना रहे हैं और पश्चिमी जावा का लोकप्रिय बीच रिजॉर्ट तांजुंग लेसुंग भी सुनामी की चपेट में आया है। सबसे ज्यादा मौतें जावा के पंडेगलांग, सेरांग और सुमात्रा के लामपुंग प्रांत में हुई हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। सेरांग, पंडेगलांग और बेंटन प्रांत के पीड़ितों के लिए मैं अपना गहरा दुख व्यक्त करना चाहता हूँ। जो पीड़ित है वे धैर्य रखें। ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के शब्द। इंडोनेशिया में बीबीसी संवाददाता रिबेका हिंसके के मुताबिक सिर्फ लामपुंग प्रांत में ही मरने वालों की संख्या कई सौ में हो सकती है। इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी के प्रवक्ता सुतोपो पुरवो नुग्रोहो ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें दिख रहा है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पानी के साथ बह आई हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है और लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं।
सुनामी से इंडोनेशिया में 222 से अधिक की मौत। ब्यौरा सुना रही थी कमलेश मठेनी।
बीबीसी के वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए पॉर्न देखने का महिलाओं के खिलाफ हिंसा से क्या है संबंध।
मैं किसी भी फीमेल से मिलता था, दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था एक सेक्सुअल एक्ट उनको लेके।
क्या सिनेमा इंडस्ट्री पर हावी हो रही है वेब सीरीज।
हॉलीवुड की पिक्चर भी कुछ नहीं उसके सामने।
रिहान फजल सुनाएंगे बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के किस्से।
मैं उधर से अपनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाए चार्ल्स।
बीबीसी इंडिया बोल का विशेष अंक, जिसमें श्रोताओं के विचारों और अपेक्षाओं को मिलेगी जगह। बीबीसी के खजाने से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का विशेष साक्षात्कार।
मेरे पिताजी के साथ थोड़े से वर्ष मैंने गुजारे हैं जो उन्होंने मुझे गाना सिखाया।
कौन है वो युवा राजनेता जो अगले 20 सालों में कर सकते हैं भारत का नेतृत्व। सुनिए दिन भर में ये सब 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक।
ये सभी कार्यक्रम 25 दिसंबर से आप हमारे दिनभर कार्यक्रम में सुन पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। बिहार में लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। राज्य में भाजपा और जदयू 17-17 सीटों पर और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को राज्यसभा भी भेजा जाएगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा और आगे बिहार में एनडीए के लिए क्या चुनौतियां हैं, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार एनडीए में 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर करीब दो महीने से चल रही खींचतान खत्म हो गई है। हालांकि इस दौरान बिहार एनडीए टूटा भी और उसका एक सहयोगी दल रालोसपा अलग होकर कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए में शामिल हो गया। आज दोपहर बीजेपी प्रमुख अमित शाह, जदयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे की घोषणा की। अमित शाह के मुताबिक सीट बंटवारा जमीनी राजनीतिक स्थिति के आधार पर किया गया है।
पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत, हर सीट का राजनीतिक स्थिति और एनडीए के गठबंधन की स्ट्रेंथ को देखकर सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने यह फैसला लिया है।
अमित शाह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि आज की घोषणा से तमाम तरह के अटकलों पर रोक लग गई है और एनडीए बिहार में 2014 ही नहीं 2009 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।
एक बात हम आप लोगों को बता दें कि 2009 में बीजेपी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन था और एनडीए था, तो उस समय पूरे देश का जो भी परिणाम आया, लेकिन बिहार में 40 में से 32 सीटें हम लोगों ने हासिल की। तो मैं समझता हूं कि माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2014 वाले से ज्यादा जाएंगे, मैं तो कहता हूं कि 2009 वाले से भी ज्यादा सीटों पर जीतेंगे।
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामविलास पासवान ने यह तो नहीं बताया कि नोटबंदी और रफाल विमान सौदे पर उनकी पार्टी के सवालों के जवाब उन्हें मिले कि नहीं, मगर आज के समझौते को उन्होंने सम्मानजनक समझौता जरूर बताया।
अमित शाह जी को सत्ता के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
भाजपा के 22 लोकसभा सदस्य बिहार से चुनाव जीत कर आए हैं। आज के समझौते से साफ है कि उसके कम से कम 5 सांसदों के टिकट कटेंगे। वहीं जदयू भी 2014 के मुकाबले करीब आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मैंने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर से पूछा कि आने वाले दिनों में बिहार एनडीए के सामने क्या चुनौतियां होंगी।
जहां तक टिकट कटने का सवाल है, तो लोग पार्टी को और नेता को वोट देंगे, उम्मीदवार को वोट देंगे, ऐसा कम होता है, इसलिए उसका कोई खास असर मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। और तो देखिए राजनीति और आगे कैसे बढ़ती है, केंद्र सरकार के और कुछ चौंकाने वाले यदि निर्णय होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो उसका क्या असर होगा, उसका आकलन बाद में होगा।
आज एक ओर बिहार एनडीए का खींचतान खत्म हुआ तो दूसरी ओर राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन की ताकत थोड़ी और बढ़ी। आज शाम मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी महागठबंधन में शामिल हो गई। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी बॉलीवुड से डिजाइनर हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नई पार्टी वीआईपी बनाई है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी, पटना।
सबरीमला मंदिर में महिलाओं का आज एक बार फिर प्रवेश नहीं हो पाया। 11 महिला श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर ही प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कुछ दूरी तक दौड़ाया। इनमें महाराष्ट्र, ओडिशा और दक्षिण भारत के राज्यों की महिलाएं थीं। सुनिए इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
जब से सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितम्बर को अपना फैसला सुनाया है, तब से आज तक एक भी महिला सबरीमला मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई है। अभी तक एक या दो महिलाएं मंदिर में जाने का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन असफल रही हैं। मगर आज ऐसा लगा कि अब संख्या बड़ी हो तो शायद ही प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेन्नई की मनिथी संस्था की सेल्वी ने बीबीसी को बताया, हाँ केरला पुलिस हमें सुरक्षा दे रही है, लेकिन हमारे अधिकार को सुरक्षा नहीं दे रही है। अगर चाहें तो हमें वो सुरक्षा भी दे सकती हैं। ये थे सिल्वी के शब्द। सिल्वी के साथ 6 महिला भक्त और 4 कार्यकर्ताएं भी थे। उनका मानना था कि उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हालांकि उन्होंने पुलिस को पहले ही बताया था कि वो सबरीमला जाएंगी। आज सुबह 3:30 बजे जब वे सबरीमला जाने के रास्ते में थे, तभी से उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पहले उन्हें ये सुनने को मिला, लेकिन जब महिलाओं का समूह पंबा से सबरीमला मंदिर की ओर मुश्किल पहाड़ पर चढ़ना शुरू होने वाला था, तो वहां से बहुत बड़ी संख्या में स्वामी अय्यप्पा के भक्तों ने उन्हें भगा दिया। तब की आवाजें भी सुनिए। पुलिस ने उन्हें पंबा के पुलिस कंट्रोल रूम में थोड़ी देर के लिए सुरक्षा दी और फिर उन्हें निलक्कल लेकर चले गए और वहां से तमिलनाडु की सीमा लेकर चले गए। सिल्वी ने बीबीसी को बताया, एक तरह से हम पुलिस के ही हिरासत में हैं। हमें वहां से पुलिस ने निकाल दिया और एक बड़ी गाड़ी में बिठाया गया। हमारे आगे और पीछे 3 पुलिस जीप हैं और एक पुलिस पेट्रोल की गाड़ी है और हमें वापस तमिलनाडु ले जाया जा रहा है। ये थे सिल्वी के शब्द। दूसरी तरफ सबरीमला कर्मा समिति के संयोजक SJR कुमार का कहना है कि समिति के समर्थक ही नहीं बल्कि स्वामी अय्यप्पा के भक्तों ने भी महिलाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा,
सबरीमला कर्मा समिति के छोड़कर बहुत लोग हैं, हमारा लोग भी होगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा बहुत दूसरे लोग भी है। जितना जो सबरीमला जाते है ना, ये सबका मन में यही है, यही विचार है, आचार पद्धति है और तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी सुनता है देखता है ये सब, वो आकर खड़ा होता है रोकने के लिए।
लेकिन पुलिस का मानना है कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे रही थी लेकिन वो उन्हें आगे नहीं ले जा सके क्योंकि उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी, खासकर जब लाखों की संख्या में भक्त आज सबरीमला में दर्शन के लिए आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे 22 जनवरी को केरला की उस याचिका की भी सुनवाई होने वाली है जहां सरकार ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं लागू कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
रुख करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या PDP के अंदर बीते एक महीने से अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। इस एक महीने में करीब 7 खास नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कई नेता दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती के सियासी भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। PDP के अंदर इस संकट की जड़ें आखिर कहाँ हैं और महबूबा मुफ्ती से अपने नेता इतने नाराज क्यों हैं? सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की ये खास रिपोर्ट।
वर्ष 1997 में PDP के संपादक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब जम्मू कश्मीर में PDP का झंडा लहराया तो राज्य के भारत समर्थक सियासी नक्शे पर एक तब्दीली के संकेत दिखने लगे। कश्मीर समस्या को हल करने, हीलिंग टच और बातचीत जैसे नारों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को आम लोगों के करीब लाया। वर्ष 1999 में दक्षिणी कश्मीर से PDP एक सीट जीतने में कामयाब हो गई। वर्ष 2014 में पार्टी को 28 सीटों पर बढ़त मिली थी। 2014 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में PDP ने जम्मू कश्मीर में BJP के साथ सरकार बनाई। सरकार के 13 महीनों के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हुआ। पिता के निधन के बाद पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने BJP के साथ सियासी याराना कायम रखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के अशांत हालात का सामना करना पड़ा। कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में महबूबा मुफ्ती को कामयाबी नहीं मिली। इसी साल जून में BJP ने PDP से अपना समर्थन वापस लेकर राज्य की गठबंधन सरकार टूट गई। सरकार टूट गई तो पार्टी के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाना शुरू किया। किसी ने पार्टी को खानदानी सियासत में कैद बताया तो किसी ने BJP के साथ पार्टी के गठबंधन को पार्टी छोड़ने की वजह गिनी तो किसी ने कुछ और कहा। सुनिए क्या कहते हैं 3 बागी मंत्री।
इस पार्टी को बर्बाद करने वाले वो जो खानदानी लोग हैं जिन्होंने ये समझ रखा था कि खानदानी टकसाल है, उन्होंने इस पार्टी को बर्बाद किया।
और आई फर्मली बिलीव कि महबूबा जी बहुत ग्रो कर चुकी हैं, शायद मेरी सोच की परवाज उनकी सोच तक नहीं पहुंच पा रही है।
मगर जब लोगों ने हम पर यकीन किया, लोगों ने हमको वोट दिया, लोगों ने हमको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दे दी, तो उसके बाद हमने क्या किया, एंट्री BJP की पहली बार कश्मीर में अगर हुई है तो हमारे ही टाइम।
बीते एक महीने में पार्टी से अब तक 4 मंत्री पद के नेता, 2 विधायक और 1 नेता भाग गए हैं। विश्लेषकों का ख्याल है कि PDP अपने राजनीतिक फलसफे से दूर हो गई। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार खुर्शीद वानी,
हम देखते हैं कि PDP से बहुत से लोग अब निकल रहे हैं, जो साबिक लेजिस्लेटर्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो एक एक करके निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है।
विश्लेषकों का ये भी कहना है कि बीते 3 वर्षों में PDP के दौर में कश्मीर में ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और वो भी एक वजह बनी कि आम जनता में पार्टी की साख कमजोर पड़ गई। खुर्शीद वानी
कि जो असल में इसकी शुरुआत जो है वो PDP BJP इत्तेहाद से हुई है और वो महबूबा मुफ्ती ने नहीं बल्कि उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था। وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے. جو ورسٹ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں کشمیر میں وہ ان کے دور میں ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی بات کر رہی تھی پارٹی, اس نے لوگوں کو ستانے میں, لوگوں کو مارنے میں اور کوئی کاثر باقی نہیں رکھی.
حالانکہ سب کے باوجود وشلیشک کہتے ہیں کہ پی ڈی پی کو راجنیتک نقصان ضرور ہوا ہے لیکن پارٹی مر نہیں گئی ہے. سینٹرل یونیورسٹی میں راجنیتی کے پروفیسر نور محمد بابا کہتے ہیں,
اس کا مطلب یہ نہیں پارٹی اب کنسیڈریبلی کمزور ہو گئی ہے, اس کے پروسپیکٹس ابھی الیکشن میں بہت اچھے نہیں لگ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو گئی.
پارٹی کے نیتا اس امید میں ہیں کہ پارٹی کو اس سنکٹ سے نکالا جائے گا. جون میں پی ڈی پی بی جے پی گٹھ بندھن سرکار ٹوٹنے کے بعد بیتے نومبر کو پی ڈی پی نے ایک بار پھر کانگریس اور این سی کے سمرتھن سے راجیہ میں سرکار بنانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی, جس کے بعد راجپال نے ودھان سبھا کو بنگ کر دیا تھا. اس سمے راجیہ میں راشٹرپتی شاسن لاگو ہے. سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ محبوبہ مفتی اس سنکٹ سے پارٹی کو نکالنے اور اپنا راجنیتک بھوشیہ بچانے کے لیے اپنی سیاسی یاترا کو کس دشا میں لے جائیں گی. ماجد جہانگیر, بی بی سی, سری نگر.
امریکہ اور پاکستان کے بیچ رشتوں میں اتار چڑھاؤ کا ایک اثر پاکستان کو ملنے والی آرتھک مدد پر پڑتا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں میں اب تناؤ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دی جانے والی سینے اور آرتھک سہایتا روک دی ہے. امریکہ کو پاکستان سے کیا شکایتیں ہیں, پاکستان کو آرتھک مدد بند ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا, ان سبھی پہلوؤں پر نظر ڈال رہے ہیں سلیم رضوی.
پچھلے 70 میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے رشتوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں, لیکن پچھلے 18 میں وبھن امریکی سرکاروں کا یہ ماننا رہا ہے اور موجودہ سرکار کا بھی ہے کہ افغانستان میں شانتی قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی مدد لی جائے. امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان جب تک طالبان, حقانی نیٹورک اور لشکر طیبہ جیسے آتنکی گٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا اور انہیں پناہ دینا بند نہیں کرتا, تب تک آرتھک مدد نہیں دی جائے گی. لیکن امریکہ نے پاکستان کو اب تک کتنی اور کیسی آرتھک مدد دی ہے؟ جب امریکہ اور سوویت سنگھ کے بیچ شیت یدھ جاری تھا, تب 1950 سے 1964 کے بیچ امریکہ نے پاکستان کو قریب $2.5 ارب کی آرتھک مدد اور $70 کروڑ سینے مدد کے طور پر دیے. امریکہ میں پاکستان کے پورو راجدوت حسین حقانی,
امداد کے ہمیشہ دو اجزاء رہے ہیں, ایک معاشی امداد, اقتصادی امداد, اور دوسری فوجی ساز و سامان. جو فوجی ساز و سامان ہے اس کا استعمال تو واضح ہے کہ وہ ہم پاکستان کے آرمی کے ہاتھ جاتا ہے, اور پاکستان آرمی اور خاص طور پہ جو ایئر فورس ہے اس کا اکوپمنٹ, ہوائی جہاز, پہلے F-16 سے پہلے سیبر ہوا کرتے تھے, پھر F-16 ہوئے. پاکستان کے پاس ہمیشہ ہوائی جہاز جو رہے ہیں زیادہ اچھے وہ امریکی ہی رہے ہیں.
1965 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ یدھ کے کارن امریکہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور پاکستان کو 65 اور 71 کے بیچ سینے مدد کے طور قریب $2.5 کروڑ دیے گئے, لیکن اس دوران بھی آرتھک مدد جاری رہی. 1989 میں پاکستان میں سینے شاسک جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی. اس سمے امریکہ میں راشٹرپتی جیمی کارٹر کو پاکستان میں ایک یورینیم سموردھن سویدھا کا پتہ چلا اور انہوں نے پاکستان کو دی جانے والی ساری سینے اور آرتھک مدد روک دی. لیکن اس کے بعد ہی جب افغانستان پر سوویت سنگھ نے قبضہ کیا تو سارے حالات بدل گئے. امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں انتراشٹریہ معاملوں کے پروفیسر مختدر خان کہتے ہیں کہ اسی دور میں پاکستان کو امریکہ کے سہیوگی کے طور پر اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا.
پاکستان کی جو انٹیلیجنس سروس تھی انہوں نے بیسیکلی امریکہ سے پیسے لیے اور امریکہ سے ہتھیار لیے اور افغان کو ٹرین کیا ان کو لڑنے کے لیے, تو وہ الائنس کے تھرو کئی چیزیں ہو گئی. ایک تو ایک کہ پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اپنی جیو پالیٹکس کا استعمال کر کے امریکہ, سعودی عربیہ جیسے ملکوں سے پیسے بھی لے سکتے ہیں اور ہتھیار کی ٹیکنالوجی بھی لے سکتے ہیں.
اس طرح امریکہ نے 1980 اور 90 کے بیچ میں پاکستان کو سینے اور آرتھک مدد کے طور پر $5 ارب سے ادھک دیے. کئی جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دوران امریکہ نے پاکستان کو $اربوں کی ایسی رقم بھی بھیجی جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. لیکن 1990 میں سوویت فوج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان کو ملنے والی امریکی مدد میں بھاری کٹوتی کی گئی. 1990 اور 2000 کے بیچ میں امریکہ نے پاکستان کو سینے مدد کے طور پر صرف $52 لاکھ دیے اور آرتھک مدد کے طور پر قریب $40 کروڑ. پاکستان اس طرح امریکہ دوارا پلہ جھاڑ لینے سے کافی ناراض بھی ہوا تھا کہ مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں. لیکن 1990 کے آس پاس ہی بھارت پرشاست کشمیر میں بھی ہنسا کا دور شروع ہوا. 2001 میں امریکہ کے خلاف 11 ستمبر کے آتنکی حملوں کے بعد دنیا بدل گئی. اب آتنکواد کے خلاف لڑائی میں پاکستان امریکہ کا سہیوگی بن گیا. 2001 اور 2009 کے بیچ امریکہ نے آتنکواد کے خلاف لڑائی کے لیے پاکستان کو قریب 13 ارب ڈالر دیے، لیکن پاکستان نے امریکہ کی مدد تو لے لی، اس کے بدلے میں اس طرح کام نہیں کیا جیسا امریکہ چاہتا تھا۔ حسین حقانی،
اولین جو چند سال تھے ان میں تو جنرل مشرف نے القاعدہ کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی، لیکن جب طالبان افغانستان میں مسئلہ بننا شروع ہوئے تو یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کا کوئی ارادہ افغان طالبان کے خلاف اقدام کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی ان گروہوں کے خلاف اقدام کرنے کا ہے جو بھارت میں جہادی کارروائیاں کرتے ہیں۔
سن 2008 میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ امریکہ نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر سے ادھک جو سینے مدد دی اس کا 70% غلط طریقے سے خرچ کیا گیا۔ سن 2009 اور 2014 کے بیچ امریکہ نے پاکستان کو 8 ارب ڈالر کی مدد دی، لیکن یہ شرط بھی رکھ دی کہ اگر آتنکیوں کے خلاف پاکستان نے کارروائی نہیں کی تو یہ سہایتا روک دی جائے گی۔ پاکستان کو امریکہ سے اب تک کل 80 ارب ڈالر کی آرتھک مدد ملی ہے۔ سن 2001 سے 2017 تک امریکہ نے پاکستان کو 33 ارب ڈالر کی سینے اور آرتھک مدد دی، جن میں آتنکواد کے خلاف لڑائی میں خرچہ بھی شامل ہے۔ مگر اب امریکہ سے آرتھک اور سینے مدد رک جانے کے بعد پاکستان کو کس پرکار کی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں؟ پورف پاکستانی دوت حسین حقانی کا ماننا ہے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو نیا اور تازہ ملٹری اکوپمنٹ نہیں مل پائے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس کیش ہے نہیں کہ جس کے ذریعے وہ سویڈن سے، روس سے، فرانس سے جہاز خرید سکے، پانی کے جہاز خرید سکے، سب مرینز خرید سکے اور ہیوی اکوپمنٹ آرمی کے لیے خرید سکے، تو یہ ایک مشکل پیدا ہوگی۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو جو بجٹری سپورٹ مل جاتی ہے اقتصادی امداد کے نام پر وہ بھی آنی بند ہو جائے گی۔
حسین حقانی اور پروفیسر خان یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں امریکہ اور پاکستان کے بیچ بہتری آنے کے آثار نہیں دکھتے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سکریے چرمپنتھی اور آتنکی گٹوں سے امریکہ کو لگاتار خطرہ بنا ہوا ہے، اور امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان آتنکی گٹوں کو پناہ دینا بند کرے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اب وقت ہے کھیل سماچاروں کا۔ کھیل سماچاروں کی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں آدیش کمار گپت جی۔ آدیش جی، ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ آسٹریلیا سے دوسرے ٹیسٹ میں ملی ہار کا غم بھارتی ٹیم کچھ بھلانے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے، کچھ انجوائے کر رہی ہے۔
جی ہاں، بالکل۔ آسٹریلیا میں کھیلی جا رہی 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز جو فی الحال 1-1 سے برابری پر ہے، اس کا تیسرا ٹیسٹ میچ بدھوار سے میلبورن میں کھیلا جائے گا، جہاں بھارتی کرکٹ ٹیم اپنے چاہنے والوں کے بیچ بہت خوش ہے اور کپتان وراٹ کوہلی باکسنگ ڈے سے شروع ہونے والے میچ کو لے کر بہت رومانچت ہے، خاص کر درشکوں کے اتساہ کو دیکھتے ہوئے۔
Atmosphere, as Nathan mentioned on Boxing Day, is going to be amazing.
یہ تو جشن کی بات ہوئی آدیش جی، لیکن مضبوط کتنی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم باکسنگ ڈے میچ کے لیے؟
دیکھیے، کچھ تو دل میں دھڑکا ضرور ہے، کیونکہ بھارت کے کوچ روی شاستری کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ آر اشوین اور رویندر جڈیجا پوری طرح فٹ نہیں ہیں، حالانکہ روہت شرما پوری طرح فٹ ہیں۔ روی شاستری نے رویندر جڈیجا کو لے کر کہا کہ ان کا کندھا ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، وہ گھریلو میچ میں بھی انجیکشن لگا کر کھیلتے تھے لیکن وہ خطرہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ ویسے روی شاستری نے سنکیت دیے کہ اگر جڈیجا 80% بھی فٹ ہوئے تو وہ کھیل سکتے ہیں۔
The problem with Jaddu was he'd taken an injection 4 days into coming to Australia here because of some stiffness in the shoulder and it took a while for that injection to settle down. So when you look at Perth, you know, we felt he was about 70-80%, you know, fit and we didn't want to risk that in Perth. If he was 80% fit here, he will play.
تو 80% اور 60% پہ معاملہ ٹکا ہوا، اگر 60 رہا تو نہیں کھیلیں گے، 80 رہا تو کھیل سکتے ہیں۔ وہیں پریمیئر بیڈمنٹن لیگ کے چوتھے سیزن کا آغاز کل ہوا، جہاں حیدرآباد ہنٹرز کی پی وی سندھو نے نئی ٹیم پونے 7 ایسز کی اسپین کی کیرولینا بارن کو 11-15, 15-8, 15-13 سے مات دی، اور یہ ایسا 14واں مقابلہ تھا جہاں دونوں آمنے سامنے تھی، اور اب دونوں ٹائی پر ہیں، یعنی 7-7 مقابلے جیت چکی ہیں، اور خیر سندھو کی ٹیم نے کل مقابلہ اپنے نام کیا۔
بہت بہت شکریہ ان کھیل سماچاروں کے لیے۔ کاریکرم کی سماپتی سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر آدرش راٹھور سے۔
بی بی سی سماچار۔ انڈونیشیا میں آئی سونامی کے کارن اب تک 222 لوگوں کی موت کا سماچار ہے۔ افغانستان کے راشٹرپتی اشرف غنی نے خفیہ ایجنسی کے 2 پورو پرمکھوں کو گرہ اور رکشا منتری نیوکت کیا ہے۔ برٹین کے سرکشا منتری نے کہا ہے کہ القاعدہ پھر سے ابھر رہا ہے اور یوروپ پر حملہ کرنے کی سازش رچ رہا ہے۔ سربیا کی راجدھانی بیلگریڈ میں ہزاروں لوگ لگاتار تیسرے سپتاہانت پر راشٹرپتی کے कथित तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने अदालतों और मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ब्रिटेन की पुलिस ने गैटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन उड़ाकर एयर ट्रैफिक बाधित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 47 साल के पुरुष और 54 साल की महिला को रिहा कर दिया है।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।